नमस्कार भारत, आज है 5 जुलाई, दिन बुधवार। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। भारतीय प्रधानमंत्री का इसराइली प्रधानमंत्री ने किया गर्म जोशी से स्वागत।
आपका स्वागत है मेरे दोस्त।
मोदी इसराइल जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। आज आपसी महत्व के कई अहम मुद्दों पर समझौते की संभावना।
माई विजिट मार्क्स ए पाथ ब्रेकिंग जर्नी ऑफ एंगेजमेंट, अ जर्नी दैट वी आर।
भारत चीन के बीच जारी कूटनीतिक बयानबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पहुंचे बीजिंग। और उत्तर कोरिया के अमरीका तक मार करने वाली मिसाइल के टेस्ट पर अमरीका ने जताई चिंता। होंगे अखबारों की सुर्खियां और विंबलडन टेनिस में कल हुए मैचों का भी जिक्र, मगर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। इसराइल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। वहां पर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इसराइल दौरे के दूसरे दिन यानी कि आज दोनों देशों के बीच रक्षा, कृषि और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग की घोषणा की उम्मीद है। मोदी की यात्रा को महत्व देते हुए इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ज्यादातर कार्यक्रमों में उनके साथ रहेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने पुष्टि की है कि उत्तर कोरिया ने मंगलवार को जापान के समुद्र में जिस अंतर महाद्वीपीय मिसाइल का परीक्षण किया है वो बैलिस्टिक मिसाइल है। बीबीसी नॉर्थ अमेरिका के संपादक के मुताबिक ये साफ हो गया है कि उत्तर कोरिया अब अमेरिका के अलास्का पर हमला करने में सक्षम है और ये दिशा बदलने वाला मोड़ है। इस बीच वॉशिंगटन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की अपील की है। चीन और रूस ने उत्तर कोरिया से परमाणु कार्यक्रम रोकने की अपील की है और अमेरिका और दक्षिण कोरिया से साझा सैन्य अभ्यास रोकने की अपील की है। मॉस्को में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम एक साझा पहल पर आगे बढ़ने पर सहमत हैं जो इसमें कोरियाई प्रायद्वीप में संकट के समाधान के लिए कदम उठाने के रूस के कार्यक्रम और उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को फ्रीज करने और अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साझा सैन्य अभ्यास को रोकने की चीन के विचार पर आधारित है ये कार्यक्रम। व्लादिमीर पुतिन के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन की एक जानी मानी संस्था हेनरी जैक्सन सोसाइटी ने सऊदी अरब को ब्रिटेन में इस्लामिक कट्टरपंथ का सबसे बड़ा स्रोत बताया है। हेनरी जैक्सन सोसाइटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी नागरिक और संस्थाएं कट्टरपंथियों और वहाबी विचारधारा का निर्यात करते हैं। इस रिपोर्ट में कतर को अलग थलग करने पर भी सऊदी अरब की आलोचना की गई है। ब्रिटेन में सऊदी अरब के दूतावास ने इन आरोपों को सरासर गलत बताया है। ब्रिटेन में विपक्षी लिबर पार्टी ने सरकार से चरमपंथ पर अपनी खुफिया रिपोर्ट को जारी करने की मांग की है। कतर को सऊदी अरब और अन्य देशों की मांगों पर अपना जवाब आधिकारिक तौर पर आज देना है। मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के विदेश मंत्रियों की आज इसी मसले पर काहिरा में एक बैठक होने वाली है। पिछले महीने इन अरब देशों ने चरमपंथ को मदद देने का आरोप लगाते हुए कतर से राजनयिक संबंध खत्म कर लिए थे। कतर ने इन आरोपों से इनकार किया है। इस बीच आर्थिक स्थिति पर देशों को रेटिंग देने वाली संस्था मूडीज ने कतर की रेटिंग स्थिर से गिराकर नकारात्मक कर दी है। कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ये कहा है, इस सूची में ऐसी कई मांगें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों के दायरे में किसी भी देश के लिए अपमानजनक साबित हो सकती हैं। ये कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के शब्द हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। स्पेन के कोस्ट गार्ड का मानना है कि भूमध्य सागर में एक नाव हादसे में करीब 50 प्रवासी डूब गए हैं। 3 अफ्रीकी लोगों को डूबती नाव से बचाया गया है। बताया जा रहा है कि मोरक्को से चली इस नाव में 50 से ज्यादा लोग सवार थे और कई दिनों तक ये नाव भूमध्य सागर में तैरती रही और हवा निकलने के बाद ये डूब गई है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसराइल के दौरे पर पहुंच गए। 1947 में भारत को आजादी मिली, एक साल बाद इसराइल का जन्म हुआ, मगर तब से लेकर आज तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इसराइल में पैर नहीं रखे। इसके पीछे कूटनीतिक कारण भी थे, मगर 1992 में भारत ने इसराइल के साथ राजनयिक संबंध कायम किए और उसके भी 25 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री इसराइल पहुंचा है। अलबत्ता 2 साल पहले भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इसराइल गए थे। तेल अवीव में नरेंद्र मोदी का स्वागत कैसे हुआ, सुनिए हरिता कांडपाल से।
आपका स्वागत है मेरे दोस्त।
कुछ इन शब्दों में इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने तेल अवीव के हवाई अड्डे पर भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके उत्साह का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो तमाम प्रोटोकॉल को ताक पर रखकर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए और कहा कि ये एक ऐतिहासिक घड़ी है। इसराइल के जन्म के 7 दशक के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इसराइल की जमीन पर कदम रखा है और इसराइली प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके देश को इस घड़ी का बरसों से इंतजार था।
Prime Minister, we've been waiting for you a long time. We've been waiting almost 70 years, in fact.
प्राइम मिनिस्टर, हमें आपका लंबे समय से इंतजार था। लगभग 70 साल से आपका ये दौरा एक ऐतिहासिक घड़ी है। हम बाहें फैलाकर आपका स्वागत करते हैं। हम भारत को प्यार करते हैं। इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के शब्द। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ इसी गर्मजोशी से इसराइल के साथ भारत की दोस्ती का जिक्र किया और कहा कि इस दिशा में बहुत कुछ किया जा सकता है।
Marks a path-breaking journey of engagement, a journey that we are excited.
मेरी यात्रा दोनों देशों के आपसी रिश्तों की एक लंबी यात्रा को चिन्हित करती है, ऐसी यात्रा जिसमें हम दोनों साथ मिलकर पूरे उत्साह के साथ जाना चाहते हैं, अपने लोगों और अपने समाज की बेहतरी के लिए। इसराइल के साथ एक मजबूत और टिकाऊ संबंध कायम करना मेरा उद्देश्य और लक्ष्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द। अपने पहले दिन की यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल के प्रधानमंत्री के साथ एक संग्रहालय का दौरा भी किया जो नाजियों के हाथों मारे गए यहूदी लोगों की याद में बनाया गया है। बाद में एक साझा प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चरमपंथ के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया।
दोज हु बिलीव इन ह्यूमैनिटी एंड सिविलाइज्ड वैल्यूज मस्ट कम टुगेदर एंड डिफीट इट।
मानवता और सभ्यता के मूल्यों में विश्वास रखने वालों को साथ आना ही पड़ेगा और इसे किसी भी कीमत पर हराना होगा। हमें आतंकवाद, कट्टरवाद और उस हिंसा का मजबूती से विरोध करना होगा जिससे हम इस दौर में जूझ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द। वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि दोनों देशों में योग्यता की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे के दूसरे दिन इसराइली राष्ट्रपति रूवेन रूवी रिवलिन के साथ मुलाकात के अलावा प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ पारस्परिक महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
मोदी का इसराइल दौरा कितना खास है, इसकी अहमियत इसी से लगाई जा सकती है कि वे वहां 48 घंटे रहेंगे जिसमें उन्हें 18 आयोजनों में शरीक होना है। भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा इसराइल के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये समझने के लिए मैंने देर रात तेल अवीव में भारतीय पत्रकार हरिंदर मिश्र से संपर्क किया।
इस तरह का स्वागत जो है यहाँ पर या तो अमरीकी राष्ट्रपति को दिया जाता है या फिर पोप को, लेकिन कुछ मायनों में ये कहीं उससे भी भिन्न है। और यहाँ पर जिन अधिकारियों से मेरी बात हुई है इसराइली विदेश मंत्रालय के, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये एक बहुत ही अनोखा तरह का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अनोखा इस तरह से है कि पहली बार इसराइली प्रधानमंत्री जो है वो लगभग 3 दिनों के इनके दौरे के दौरान पूरा वक्त उनका साथ देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाई जहाज से उतरने के बाद जब तक वो वापस रात को होटल नहीं पहुंचे तब तक नेतन्याहू लगातार उनके साथ बने रहे, और अगले 2 दिनों के दौरान भी यही देखने को मिलेगा कि वो लगातार उनके साथ बने रहेंगे।
हरिंदर, ये तो दिखाई दे रहा है कि काफी गर्मजोशी से दोनों प्रधानमंत्री आपस में मिल रहे हैं, लेकिन इससे निकलेगा क्या, हासिल क्या होगा, इसका पता शायद बुधवार को होने वाली मुलाकात से चलेगा।
जी बिल्कुल, सारे जो समझौते होने और तकरीबन 7 समझौते दोनों देशों के बीच होने वाले हैं वो आज ही होंगे। और ये समझौते जो हैं, इसमें भी गौरतलब ये है कि कोई भी समझौता जो है वो सुरक्षा संबंधित समझौता नहीं है। यहाँ पर साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जहाँ तक सुरक्षा संबंधों का सवाल है तो इन दोनों देशों के बीच सुरक्षा संबंध जो हैं वो बहुत ही मजबूत हैं, और उसके लिए प्रधानमंत्री को विशेष तौर पर यहाँ नहीं आना था। इस दौरे से जो चीज़ वो हासिल करना चाहते हैं वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर इसराइली टेक्नोलॉजी जो है वो भारत उसको पाना चाहता है, और बाकी जो क्षेत्र हैं जैसे कि कृषि हो या फिर जल से संबंधित कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी ऐलान होगा। स्पेस रिसर्च को लेकर के बहुत सारे दो समझौते होंगे जो कि पहले के जो समझौते हैं उनसे आगे कुछ बढ़ करके और भी बात होगी
जी। और इसके अलावा जो भारतीय हैं वहाँ पर इसराइल में बसे हुए, कोई खास आयोजन हो रहा है?
भारतीय समुदाय जो यहाँ पर है, भारतीय यहूदी समुदाय या फिर कुछ भारतीय जो यहाँ पर किसी तरह के काम में लगे हुए हैं, उनमें बहुत ही ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री शाम को संबोधित करने वाले हैं भारतीय समुदाय को, और उसके लिए लोगों से कहा गया था कि वो अप्लाई करें। और देखने को यह मिला है कि जहाँ 4,000 लोगों को सिर्फ आमंत्रित किया गया है, वहीं 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लेने के लिए आगे आए थे।
इसराइल में जो भारतीय हैं वो किस तरह के भारतीय हैं?
दरअसल वो भारतीय जो कि भारतीय नागरिक हैं और यहाँ पर रह रहे हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं ज्यादातर। वो लोग यहाँ पर काम करने के लिए आए हुए हैं, और उनकी संख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं है। उनकी संख्या 1,000-2,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 80,000 से ज्यादा, और यहाँ पर कुछ लोग 1,00,000 तक की भी बात कर रहे हैं। भारतीय मूल के यहूदी हैं जो कि 4 विभिन्न क्षेत्रों से भारत से आए हैं, और ये पूरी आबादी जो है वो आज़ादी के बाद की आबादी है, लेकिन इसमें दूसरी पीढ़ी के भी बहुत सारे लोग हैं। तो खास बात यह है कि दूसरी पीढ़ी के भी जो भारतीय मूल के यहूदी यहाँ पर हैं उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है।
इसराइल से ये थे भारतीय पत्रकार हरिंदर मिश्र। भारत में राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी 1970 के दशक से ही भारत और इसराइल के बीच बेहतर संबंधों की वकालत करते रहे हैं। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने डॉक्टर स्वामी से बात की और सबसे पहले पूछा कि 40 साल पहले क्या उन्हें इस बात का अंदाजा था कि भारत और इसराइल के रिश्ते इस कदर बेहतर हो सकते हैं?
नहीं, मेरे स्वप्न में भी मैं सोच नहीं सकता था, क्योंकि इतनी विरोध थी। और मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य उस समय ये हुआ कि हमारे हिंदू भाई कह रहे थे इससे बिगड़ जाएगा सब, अस्तित्व हो जाएगी, ये है वो है, इसराइल पिट्ठू है अमेरिका के, उसके साथ क्या रिश्ता रखना। तो उस समय ऐसी हवा थी कि हमें, वैसे सब लोग इसी बात पर कंडेम करते थे कि हम इसराइल की प्रेमी हैं। तो मुझे तो कभी उस समय तो नहीं सोच रहा था, जब जनता पार्टी की सरकार आई थी 77 में, तब भी मैंने देखा हमारे पार्टी के जो जनसंघ घटक थे उनमें भी ये था कि नहीं नहीं अभी इतना जल्दी नहीं करनी चाहिए। मैंने उस समय इसराइल के फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर थे जुबिन मेहता को मैंने इन्विटेशन देना पसंद किया था, और उसको वो तैयार भी हो गए, परंतु वाजपेयी ने कहा नहीं नहीं इससे हमारे 25 अरब देशों नाराज हो जाएंगे और इसके लिए हमें नहीं करना है।
उस समय सर वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे?
हाँ, विदेश मंत्री थे। मोरा जी तो तैयार थे, चरण सिंह भी तैयार थे, बट वाजपेयी बड़ी चलती थी क्योंकि वो एक सबसे बड़े घटक के नेता थे, तो उन्होंने होने नहीं दिया। और फिर मोरा जी ने मोशे दयान को भी गुप्त रूप से आने के लिए कहा, वो भी एक संकेत है कि उनको खुलेआम बुलाने के लिए तैयार नहीं थे। वो मोशे दयान आए थे अपने झूठे नाम पर, और उनसे बातचीत हुई थी, और जब ये बाहर निकला तब वाजपेयी ने कहा कि नहीं नहीं कभी ऐसी मीटिंग नहीं हुई, यद्यपि वो मीटिंग में उपस्थित थे। तो ऐसी माहौल थी, और बदलने लगी जब मैं 81 में, मैं जनता पार्टी के उस समय उपनेता था पार्लियामेंट में, तो मुझे मेनाकम बेगिन प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक इनविटेशन भेजा, तो उसमें पार्लियामेंट में हंगामा बहुत हुआ। मिसेस गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मुझे हाथ कहा कि मैं हाथ जोड़ सके कह रही हूँ कि मत जाओ, इससे बड़ी गलतफहमी होगी। तब मैं गया, और उसके बाद लोगों को पता लगे कि देश में मत बदलने लग गई है, और फिर धीरे धीरे हुआ। और 1990 में चंद्रशेखर की राज में मैं सीनियर मोस्ट मिनिस्टर था, तो हमने शुरू की थी और नसीमा राव ने उसको फाइनल किया।
प्रधानमंत्री के इस दौरे के और आप क्या मायने देखते हैं?
नहीं, वो एक सिग्नल दे रहे हैं कि हम अपने राष्ट्र हित में ही रिश्ता बनाएंगे। हमें पुराने कांग्रेस की जो बना हुई या आजादी आंदोलन में जो तथाकथित मुद्दे बने उस पर हम नहीं करेंगे, हम अपने राष्ट्र हित और अपने जो देश की सुरक्षा की दृष्टि से जो ठीक समझेंगे वही करेंगे, जो हमारे साथ है उनके साथ हमें ये मैसेज दे रहे हैं।
भारतीय प्रधानमंत्री के इसराइल दौरे पर ये थे राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। और आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि क्या कहते हैं आज के अखबार। हरिता उन पर नजर डाल चुकी हैं। हरिता, क्या है सुर्खियां आज?
आज के अखबारों में जो तस्वीर सारे अखबारों के पन्नों पर देख रही हूं मैं, वो ये है बेंजामिन नेतन्याहू और मोदी गले मिलते हुए। और कई अखबारों ने लिखा है कि 10 मिनट में वो 3 बार गले मिले, और अमर उजाला लिखता है कि 18 मिनट में वो एयरपोर्ट पर 3 बार गले मिले और 4 बार हाथ मिलाया। जी, इसके अलावा एक खबर जो है वो भारत और चीन के तनाव की लगातार कई दिनों से सुर्खियां बनी हुई है। आज नव भारत टाइम्स ने लिखा है कि चीन के राजदूत ने दो टूक कहा है कि भारत तय करे कि उसे युद्ध चाहिए या शांति। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि चीन के राजदूत हैं, उन्होंने कहा है कि भारत के साथ डोकलाम सीमा ये जो विवादित पूरा क्षेत्र है इस पर स्थिति काफी तनावपूर्ण है और कोई समझौता नहीं करेगा चीन और भारत को पीछे हटना होगा, और अब जो है गेंद भारत के पाले में है। हिंदुस्तान अखबार ने लिखा है कि चीन झूठ बोल रहा है और जिस सीमा के मसले पर जो 1890 की संधि का हवाला वो दे रहा है जिसमें कहा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे मान लिया था, तो हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के हवाले से हिंदुस्तान ने लिखा है कि एक इस पत्र की मूल प्रति जो है वो अखबार के पास है और इसमें जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी कोई बात कमिट नहीं की थी कि वो मान रहे हैं। द हिंदू अखबार की हेडलाइन है कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है अफ्सपा उसे हटाने पर विचार कर रही है, और केंद्र ने बीजेपी प्रशासित दोनों राज्यों से राय पूछी है। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने द हिंदू अखबार को बताया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के मत का इंतजार कर रही है और इसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा, तो इस पर भी सुर्खी बनी हुई है। आज दैनिक भास्कर समेत मैं कई अखबारों में इस खबर को देख रही हूं। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि शादी के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना हो सकता है अनिवार्य, देरी होने पर जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा नोटबंदी की बात फिर से एक बार चर्चा में है। आज सारे अखबारों के पहले पन्ने पर यह खबर है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि बंद किए गए नोटों को जमा कराने के लिए कोई विकल्प कोई विंडो दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि जिन लोगों की मजबूरी थी और जो समय रहते पुराने नोट नहीं जमा करा सके उन्हें एक मौका मिलना चाहिए, और क्यों नहीं मिले इस पर सरकार
बिल्कुल अभी भी यानी कई लोगों के पास वो नोट्स हैं, यहाँ रिजर्व बैंक है उसके बाहर अक्सर लोग मिल जाते हैं इस बारे में पूछताछ करते हुए कि
जी उसमें क्या होगा उनके। उसमें इंडियन एक्सप्रेस ने उदाहरण दिया कि अगर कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई जेल में बंद था और नहीं जमा करा पाया तो वो क्या करे, और एक व्यक्ति है वो कोमा में थे तो उसका क्या किया जाए।
जी धन्यवाद हरिता। और जैसा हरिता ने कहा कि अखबारों में भारत चीन के बीच विवाद की चर्चा है, उसकी भी चर्चा होगी, लेकिन इसके पहले एक और विवाद की चर्चा जो कूटनीतिक विवाद है वो है अमेरिका और उत्तर कोरिया का। अमेरिका ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने जापान सागर में जो मिसाइल टेस्ट किया है वो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी। उत्तर कोरिया ने इससे पहले मंगलवार को कहा था कि उसने पहली बार एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि उत्तर कोरिया अब अमेरिका में अलास्का तक मिसाइल हमला कर सकता है। और ब्यौरे के साथ एक बार फिर हरिता।
अमेरिका ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने जापान सागर में जिस मिसाइल का परीक्षण किया है वो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी। अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने इसे अमेरिका और दुनिया के लिए एक नया खतरा बताया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिका कभी भी एक परमाणु लैस उत्तर कोरिया को स्वीकार नहीं करेगा। उत्तर कोरिया ने मंगलवार को एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण का दावा किया था। इसके कुछ ही घंटों के बाद अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक बुलाने की मांग की। समझा जाता है कि आज बंद कमरे में 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद की एक बैठक करवाई जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने इस बारे में एक बयान जारी किया है जिसमें लिखा है कि इस मिसाइल का परीक्षण करने से अमेरिका उसके सहयोगियों इस क्षेत्र और सारी दुनिया के लिए खतरा बढ़ गया है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि उत्तर कोरिया अब अमेरिका के अलास्का प्रांत तक मिसाइल हमला कर सकता है। हालांकि विशेषज्ञ नहीं मानते कि इसका निशाना सटीक होगा। पूर्वी एशिया और पैसिफिक मामलों में अमेरिका के पूर्व उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर हिल ने बीबीसी से कहा,
There's no question, the North Koreans are getting closer and closer if they haven't already gotten to the point where they have an ICBM that could
अगर उन्होंने अब तक ICBM नहीं बनाई है जो अमेरिका में हमला करने में सक्षम है और परमाणु बम ले जाने में सक्षम है, तो इसमें कोई सवाल नहीं है कि उत्तर कोरिया उस दिन के बहुत नजदीक पहुंचता जा रहा है जहां वो इसे बनाने में सक्षम हो जाएगा। हम जानते हैं कि उन्होंने परमाणु परीक्षण नहीं किया है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उनका इरादा यही है। क्रिस्टोफर हिल के शब्द। ये पहला मौका है जब उत्तर कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की सफलतापूर्वक परीक्षण करने का दावा किया है। हालांकि उत्तर कोरिया के सामने दूसरी चुनौती इस मिसाइल के लिए परमाणु हथियार विकसित करने की है।
उधर भारत और चीन के रिश्तों में उतार चढ़ाव का दौर बरकरार है और इसी सब के बीच भारत के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर चीन के दौरे पर हैं और शुक्रवार को जर्मनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात भी हो सकती है। इसे लेकर हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने बीजिंग में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार शैबल दासगुप्ता से बात की और सबसे पहले पूछा कि ताज़ा विवाद को लेकर चीन का हाल का रुख क्या है।
चीन ने ये नहीं सोचा था कि भूटान के मसले में भारत इतना हिम्मत जुटा पाएगी कि चीनी ट्रुप्स को धक्के मारकर वहां से निकाल देगी, भूटान की जगह से दोकलाम प्लेटू में से जहां चीन के ट्रुप्स सड़क के बना रही थी। भारत की बात जो है कि हम भूटान को बचाना चाहते हैं, उससे आगे चलकर अगर उस दोकलाम प्लेटू में चीन के ट्रुप्स आ जाते या सड़क बन जाती तो भारत के लिए भी जोखिम हो सकता था, क्योंकि बिल्कुल सर पे बैठ जाएंगे। तो भारत का भी अपना स्वार्थ था उनको घसीट के वहां से निकालने के लिए। काफी हद तक चीन परेशान हो गई और फिर वो धमकियों पर आ गई, उसके बाद भारत ने भी जवाब दिया, तो दोनों तरफ से एक तरह से बयानबाजी और गर्मा गर्मी का माहौल रहा है। और आज पहली बार फॉरेन मिनिस्ट्री विदेश मंत्रालय से उस तरह का बयानबाजी हुआ नहीं है, लेकिन इतने दिन तो यही होता रहा।
दोनों देश ब्रिक्स में साथ आते हैं, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत को अभी फुल मेंबरशिप दी गई है, G20 में भारत और चीन के नेता साथ हैं। दूसरी तरफ रिश्ते कई मुद्दों पर बनते बिगड़ते दिखते हैं, चाहे NSG का मुद्दा हो, मसूद अजहर का मुद्दा हो, तो ये रिश्ते भारत और चीन के जा किस दिशा में रहे हैं?
कल जावेदकर यहाँ एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ब्रिक्स के। शुक्रवार के दिन प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात होगी हैम्बर्ग में, जहाँ G20 की मीटिंग हो रही है। मोदी सरकार आने के बाद ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है कि बातचीत का जो सिलसिला है उसमें रुकावट नहीं रखी जाती है, वो कंटिन्यूस चल रही है।
क्या उत्तर कोरिया की जो गतिविधियां हैं उससे भारत और चीन के रिश्तों पर कोई असर आता हुआ आप देखते हैं?
कल तक ये माना जाता था कि चीन का कंट्रोल नॉर्थ कोरिया पे है, उत्तर कोरिया पे। अब ये देखा जाता है कि उत्तर कोरिया किसी का कंट्रोल नहीं, तो बार बार ये सवाल आता है कि चीन का क्या उन देशों पर कंट्रोल है जिस पर चीन मानती है उनका कंट्रोल है। जैसे एक जमाने में म्यांमार चीन के हाथ में थी, लेकिन अब म्यांमार उनको परवाह नहीं करती है। कल अब नॉर्थ कोरिया उनकी बात नहीं सुनती, कल को पाकिस्तान उनकी बात नहीं सुनेगी। तो ये चीन पर बहुत बड़ा एक प्रकार से दबाव भी आया है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका में कह रहे हैं कि चीन कुछ कर नहीं पा रही है। जापान हो सकता है आज रात को ही नॉर्थ कोरिया पे कोई एक्शन ले ले। चीन को चिंता है कि मिलिट्री एक्शन अगर हो जाएगी तो चीन किस तरफ जाएगी? नॉर्थ कोरिया के विरोध तो जा नहीं सकती, क्योंकि पुराने दोस्त थे। लोग तो कहते हैं कि सारे आर्म्स और मिलिट्री की सहायता चीन करती आई है नॉर्थ कोरिया को। अगर साथ में रहेंगे तो बहुत साफ हो जाएगा कि आप डिक्टेटर के साथ हैं। देखना यह है कि भारत के साथ ऐसे समय पर भी क्या चीन अपनी रिश्ते बिगाड़ना चाहती है। तो उत्तर कोरिया शायद परिस्थिति में बहुत बड़ी परिवर्तन लाती है, और चीन को सोचना पड़ेगा कि ये कितनी दिशाओं में वो लोगों से लड़ पाएगी। जापान से लड़ेगी, साउथ कोरिया से लड़ेगी, नॉर्थ कोरिया का रिश्ता संभालेगी, अमेरिका से रिश्ते खराब है, साउथ चाइना सी में परेशानी है, इंडोनेशिया वियतनाम से नाराज है, और इस तरफ भारत है। दसों दिशा में चीन को संभालना पड़ रहा है। चीन की छवि पर भी बहुत बड़ा सवाल आता है कि दुनिया का दूसरा नंबर का आज अर्थतंत्र है, और ऐसा देश किसी के साथ, खास करके पड़ोसियों के साथ संबंध क्यों नहीं बना पाती है। खास करके भूटान जैसे एक छोटे देश के साथ भी आपका अनबन है, उसकी जमीन आप लेने की कोशिश करते हो, तो ये एक बहुत बड़ा छवि का सवाल आ गया है चीन के आगे।
चीन के सामने मौजूद चुनौतियों के बारे में बता रहे थे बीजिंग से पत्रकार शैबल दास गुप्ता। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार सिंध प्रांत के थारपरकर इलाके में कोयला भंडार पर काम करने के लिए 30 महिला डंपर चालकों को चुना गया है। एक साल की ट्रेनिंग के बाद ये महिलाएं नियमित काम शुरू करेंगी। सबा नाज की रिपोर्ट।
जब कभी किसी पसमांदा इलाके से खवातीन अपने माली मसाइल के हल के लिए घर से बाहर कदम रखती हैं, तो उन्हें बाज़ोकात अपने ही घर वालों की तरफ से मुखालिफत का सामना करना पड़ता है। मिट्टी में रहने वाली 25 साल रानी ने बीबीसी को बताया,
मैं बच्ची भी पढ़ा रही हूँ, हम बहुत गरीब लोग थे, इसलिए मैंने अप्लाई किया। फिर मैंने कहा डंपर में अप्लाई करूँ, मैं बूटी से शौक से चलाऊंगी। और जब भाइयों के पास आई तो उन्होंने बोला कि कोई और अच्छी सी जॉब करो, डंपर की चला रही। तो मैंने कहा ये भी तो एक काम है, जब लोग नौकरी कर सकती हैं तो ये भी सवाल चलाना। वो भी मजाक उड़ाते हैं लेकिन हम उनका नहीं सुनते।
माइनिंग कंपनी के सरबराह शमसुद्दीन का कहना है कि खवातीन की भर्ती से कबल कई हलकों की जानिब से इस सिलसिले में मुखालिफत भी सामने आई। कई सवालात उठे कि मर्दों की बड़ी तादाद बेरोजगार है, ऐसे में खवातीन को डंपर ड्राइविंग जैसे शोबे में मर्दों पर तरजीह देना क्यों अहम है।
ये मुखालफत भी आई कि क्या मर्द मर गए हैं, यहाँ के तब आप औरतों को रख रहे हैं, औरतों को नहीं रखना चाहिए, औरतों के लिए काम नहीं है।
दूसरी जानिब इस काम के लिए दिलचस्पी रखने वाली खवातीन का जोशो खरोश देखने से ताल्लुक रखता था। खवातीन के डंपर ड्राइविंग प्रोग्राम की इंचार्ज जहां आरा ने बीबीसी को बताया,
जो यंग लड़कियां जो बहुत एनर्जेटिक हैं, एक है हमारे पास ग्रुप जो कि ज्यादा जरा ओल्डर खवातीन है, उनको बहुत होता है कि ठीक है हमने अपनी जिंदगी में इतना नहीं किया लेकिन हमारी जो बहू है और बेटी है उनको मौका मिलना चाहिए। हमारे पास रजिस्ट्रेशन चल रही थी एट 4 डिफरेंट पॉइंट्स थरपारकर में, उन पॉइंट पे काफी खवातीन आई हैं जो कि अपने शौहरों को, बेटों को और अपने साथ बहू और बेटियों को भी लेके आई हैं।
डंपर्स की ड्राइविंग के लिए मुंतखब होने वाली खवातीन को बाकायदा इस काम पर लगाने से पहले उन्हें एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। माइनिंग कंपनी के सरबराह ने इसकी तफसील बताई,
एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। उस साल की ट्रेनिंग के अंदर इनमें सबसे पहले इनको लैंग्वेज की स्किल दी जाएगी बिकॉज इनकी इंग्लिश की स्किल थोड़ी सी बेहतर हो जाए ताकि ये मैनुअल पढ़ सकें, और तकरीबन एक साल की ट्रेनिंग के बाद इनको डंपर्स पे लगा देंगे।
पाकिस्तान की मेहनत कश खवातीन किसी से कम नहीं, जरूरत इस बात की है कि उन्हें जिंदगी के हर शोबे में नुमाया किरदार अदा करने और अपना मकाम बनाने के मौके फराहम किए जाएं।
और अब खबरें विंबलडन से।
विंबलडन से बीबीसी हिंदी की विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। महिला सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर एक की खिलाड़ी एंजेलिक केरबर ने एक कड़े मुकाबले में अमेरिका की इरीना फाल्कोनी को 6-4, 6-4 से हराकर दूसरे राउंड में प्रवेश कर लिया है। पिछले साल यहां विंबलडन में फाइनल खेलने वाली केरबर इस साल खराब फॉर्म से जूझ रही हैं। मैच के बाद केरबर ने अपनी प्रतिद्वंदी की तारीफ की, इरीना के पास हारने के लिए कुछ नहीं था, वो तो क्वालिफायर के जरिए आई है, वो सेंटर कोर्ट पर मैच को एंजॉय कर रही थी, लेकिन इरीना ने अच्छा मैच खेला। दरअसल हम दोनों ही अच्छा खेले, एंजेलिक केरबर के शब्द। पुरुषों के सिंगल्स में अर्जेंटीना के खुआन मार्टिन डेल पोट्रो को भी थनासी कोकिनाकिस से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिर में डेल पोट्रो 6-3, 3-6, 7-6, 6-4 से जीतकर दूसरे राउंड में पहुंच गए। उधर नोवाक जोकोविच को अपने पहले राउंड के मैच में अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ी, उनके प्रतिद्वंदी स्लोवाकिया के मार्टिन क्लीजान पिंडलियों में दर्द के कारण दूसरे सेट में ही हार मान गए। सेंटर कोर्ट पर दिग्गजों को देखने के लिए जमा हुए दर्शकों को एक और निराशा हाथ लगी। रोजर फेडरर को पहले राउंड में चुनौती दे रहे अलेक्जेंडर डोलगोपोलोव ने दूसरे ही सेट में घायल होने की वजह से हथियार डाल दिए। उधर महिलाओं के सिंगल्स मुकाबलों में इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली कैरोलिना प्लिस्कोवा ने एवगेनिया रोडिनो को आसानी से हरा दिया। महिला सिंगल्स में 10वें रैंक के खिलाड़ी अग्नियेश्का राडवांस्का ने येलेना यान्कोविच को 7-6, 6-0 से हराकर दूसरे राउंड में प्रवेश कर लिया है। राडवांस्का 2012 में विंबलडन फाइनल खेल चुकी हैं। पवन सिंह अतुल, बीबीसी विंबलडन।
और सभा समाप्ति से पहले एक बार फिर मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसराइल दौरे के दूसरे दिन कई पारस्परिक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद। अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने पुष्टि की है कि उत्तर कोरिया ने मंगलवार को जापान के समुद्र में जिस अंतर महाद्वीपीय मिसाइल का परीक्षण किया वो बैलिस्टिक मिसाइल है। ब्रिटेन की एक जानी मानी संस्था हेनरी जैक्सन सोसाइटी ने सऊदी अरब को ब्रिटेन में इस्लामिक कट्टरपंथ का सबसे बड़ा स्रोत बताया है। कट्टर को सऊदी अरब और अन्य देशों की मांगों पर अपना जवाब आज आधिकारिक तौर पर देना है। स्पेन के कोस्ट गार्ड का मानना है कि भूमध्य सागर की एक नाव हादसे में करीब 50 प्रवासी डूब गए हैं। 3 अफ्रीकी लोगों को डूबती नाव से बचाया गया है। फ्रांस में सरकार ने अपने पहले विश्वास मत को हासिल करने में कामयाब रही है। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडुआर्डो फिलिप ने संसद में सरकारी खर्च में कटौती और श्रम सुधार के प्रस्ताव रखे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com, जहां आप दुनिया भर की पल पल बदलती खबरें और उनका विश्लेषण देख पढ़ और सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया अजीत सारथी ने। तो अब अपूर्व कृष्ण को दीजिए अनुमति। नमस्कार।